हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इंस्पेक्टर ने पहले तो अरुण को चेतावनी देने की बात कही, पर फिर अचानक अपना लहजा बदलकर विराज से हस्ताक्षर करने को कहा। विराज ने सुनैना की ओर एक नज़र देखकर आगे बढ़ा और कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, अब आप इस लड़के को घर ले जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए इसे पुलिस स्टेशन आना होगा, इंस्पेक्टर ने फिर से अपनी कड़क आवाज में कहा। सुनैना और विराज ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और अरुण को लेकर स्टेशन से बाहर आ गए। आदित्य और स्वीटी को कुछ कुछ समझ आ गया था, इसलिए वे भी चुपचाप विराज, सुनैना और अरुण के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े होकर कुछ पूछना या बात करना उन्हें भी उचित नहीं लग रहा था। थैंक यू सो मच विराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने ऐसे वक्त में मेरी और मेरे भाई की मदद की। आई डोंट नो, अगर वहां कॉलेज में तुम नहीं आते तो मैं अकेले पता नहीं क्या करती। मैं तो इतना पैनिक हो गई थी। रियली सीरियसली थैंक यू। मैंने तुम्हें इतना गलत समझा और इतने दिनों तक तुमसे बात भी नहीं की। तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक था, बट फिर भी तुमने वो सब बातें किनारे करके मेरी मदद की। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बाहर आते ही सुनैना ने विराज की तरफ देखते हुए लंबे शब्दों में उसका शुक्रिया अदा किया। सुनैना के इतना कहने पर विराज ने आदित्य की ओर एक नज़र देखी और हल्का सा मुस्कुराया। फिर सुनैना का हाथ पकड़कर उसकी ओर देखते हुए बोला, यू डोंट हैव टू बी, इट्स नॉर्मल। अगर मैं किसी चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बदले में तुम भी कभी मेरी मदद कर देना। बट अभी तुम्हें मदद की ज़रूरत थी ना, तो मैंने पिछली बातों को नहीं सोचा। और मैं सच में ऐसा इंसान नहीं हूँ सुनैना। जैन मंदिर तुम्हें बहुत पसंद करता था, बट यू आर मैरिड। छोड़ो इन बातों को, अभी उन सब का कोई मतलब नहीं है। तुम अरुण का ख्याल रखना और कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक नहीं किया है और ना ही कभी करूँगा। वहीं खड़े आदित्य को सुनैना और विराज की ये बातें किसी जहर भरे तीर की तरह लगीं। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने सिर्फ गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कस लीं, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। सुनैना ने विराज की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे झुका दिया और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, मैं तो नहीं चाहूंगी कि ऐसा दोबारा कभी हो और मुझे उसकी ज़रूरत पड़े, बट मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। थैंक यू विराज, इतना बोलने के लिए भी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। घर से दो बार कॉल आ चुका है, मॉम का भी और अवंतिका का भी, और ये मॉम तो इतनी फ़िक्र करती है मेरी कि क्या बताऊँ। चलो बाय, तुम ध्यान रखना, टेक केयर। इतना बोलते हुए विराज अपनी कार की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही आदित्य सुनैना के सामने आते हुए कुछ कहने के लिए मुँह खोला, लेकिन फिर उससे चेहरा फेर कर अरुण की ओर देखने लगा। क्या हुआ, क्या है ये सब? और अरुण, तुम ही बता दो, कुछ तो तुम्हारी बहन ने सब कुछ बता ही दिया होगा जिसे बताना था। आदित्य का सुनैना के लिए प्यार और फ़िक्र अब गुस्से में बदल चुका था, इसलिए वो सुनैना की ओर से नज़रें हटाकर अरुण की ओर देखते हुए पूछा। वे चारों अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे और विराज अपनी कार बैक करके जा चुका था। तभी स्वीटी, जो बातचीत से ज़्यादा आसपास के माहौल को देख रही थी, समझदारी दिखाते हुए बोली, भैया भाभी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातों के लिए हम बिल्कुल भी सही जगह पर हैं, इसलिए प्लीज़ अभी सब लोग कार में बैठिए और रास्ते में घर चलकर ये सारी बातें हो सकती हैं। हाँ चलो अरुण, मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगी, सुनैना कार की ओर बढ़ते हुए बोली। सुनैना की इस बात पर आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप पीछे जाकर बैक सीट पर बैठ गया, क्योंकि सुनैना अब तक आगे ड्राइविंग सीट के बगल वाला गेट खोल चुकी थी। आदित्य को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि सुनैना ने विराज को कैसे भी मदद के लिए बुला लिया, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि आदित्य अब विराज को इतना कुछ खास पसंद नहीं करता, और फिर उसके सामने भी वो इतने लंबे शब्दों में उसे थैंक यू बोल रही थी। अरे दी, इतना एहसान कर दिया है अभी उसके से छुड़वाकर, तो अभी थोड़े एक दो दिन के लिए मुझे घर मत भेजो। ये चेहरे पर लाल पीले निशान देखकर माँ पापा तो घर में बवाल ही खड़ा कर देंगे और मामा मौसी बुआ तो पता नहीं क्या क्या सवाल करेंगे। इसीलिए तो मैंने घर पर किसी को कॉल नहीं किया और आपको ही कॉल किया था। सुनैना की बात पर अरुण ने उसे याद दिलाया। सुनैना बोली, अरे हाँ, वो तो घर है ही नहीं, मैं भी पता नहीं कैसे गलती से उसे घर बोल देती हूँ। चल ठीक है, तो मेरे साथ ही चल, नैना दी का कमरा वैसे भी अभी ठीक ठाक ही होगा, तो वहाँ रह लेना। नैना दी चली गई आपके घर से? अरुण ने एक और सवाल किया। हाँ, वो तो एक हफ्ता हो गया नैनादी को गए हुए, मैंने तुझे बताया नहीं। हाँ क्या बताती, इन सब में तो टाइम ही नहीं मिला। बोलते हुए सुनैना ने अरुण को आगे स्वीटी के साथ ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और खुद पीछे आकर आदित्य के साथ बैक सीट पर बैठ गई। लेकिन सुनैना के बैठकर ही आदित्य ने अपना गुस्सा थोड़ा साइड में करते हुए उससे पूछा, अच्छा ठीक है, ये सब बाद में बता देना, अभी ये बताओ कि हुआ क्या था और ये अरुण को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था। सब कार में बैठते ही स्वीटी ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन आदित्य के इस सवाल पर उसका भी ध्यान सामने रास्ते पर ड्राइव करने से ज्यादा इस सवाल के जवाब सुनने में लग गया। वो कार के बीच में लगे मिरर से पीछे देखते हुए उनकी बातें सुनने लगी। सुनैना आदित्य की तरफ देखते हुए उसकी बात का जवाब दे पाती, इससे पहले ही अरुण ने स्वीटी के कंधे पर हल्के से टैप करते हुए कहा, ओ मिस ड्राइवर, आगे देखकर ड्राइव कर लो, घर सही सलामत पहुंचा देना, पहले से ही काफी टूटा फूटा हूँ। हाँ तो ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए थे जिससे कि ऐसा कुछ झेलना पड़े। अरुण के टोकने पर स्वीटी चिढ़ते हुए सामने तो देखने लगी, लेकिन मुंह बनाकर उसे ताना मारते हुए ये बात भी बोल ही दी, अरे कुछ नहीं किया अरुण ने, वो तो बस सब ने मिलकर उसे फंसाया है, क्योंकि वो इजी टारगेट है, सब जानते हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके घर से कोई भी उसे बचाने नहीं आने वाला और इसीलिए सब ने मिलकर ही ये प्लान बनाया होगा। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। आदित्य के सवाल का नहीं लेकिन स्वीटी की बात का जवाब देते हुए सुनैना ने एकदम से कहा। उसकी इस बात पर आदित्य और स्वीटी फिर से एक नज़र सुनैना की तरफ देखने लगे, लेकिन स्वीटी फिर से सामने देखकर ड्राइव करने लगी और सुनैना आगे बोलने लगी, शाम के वक्त मुझे कॉल आया था पुलिस स्टेशन से ही, लेकिन कॉल पर अरुण था और उसने मुझे यहाँ इस पुलिस स्टेशन का एड्रेस देते हुए वहाँ पर ही बुलाया और इसीलिए घर से निकलने से पहले मैंने गीता दी को भी नहीं बताया। क्रमशः